الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے انسانوں کا حق نہیں ادا کیا، شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا. تو ہمیں ہر اس کوشش میں جو بھی ہمارے اس دین کو فسیلیٹیٹ کرنے میں، جو ہمیں اس دین کے قریب کرنے میں کوئی کرے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور میں اسی دعا کے ساتھ آج کا سیشن شروع کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ظاہر میں اور جو پیچھے چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کی کوششوں سے یہ سارا سلسلہ بہت ہی اچھے طریقے سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا بھی دے اور ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. طور قرآن 2024 DQ 2024. آج اس میں سے ہم کریں گے پارہ نمبر 17، 17th پارہ، اقترب للناس. بہت ہی زبردست پارہ ہے، مبالغہ نہ ہو جائے، ادروائز اب تک جتنے بھی پارے کیے ہیں ان سے سب سے زیادہ پروفاؤنڈ پارہ ہے یہ. یعنی اس میں اتنا گہرا میسج ہے کہ اس کو پڑھنے کے دوران میں خود بھی سوچتی رہی، اور مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی حد تک آپ لوگ بھی ضرور اس کو سمجھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں جو صورت جہاں دی ہے وہ وہیں آنی چاہیے اور اس سے حق ادا ہوتا ہے. تو آئیے ذرا سا پچھلے پارے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. پارہ نمبر 16 میں، 16 میں ہم نے سورت کہف 75 سے 110 تک کی، مریم 1 سے 98 یعنی پوری سورت، اور اسی طرح سورت طہٰ پوری 1 سے 135 تک کی. اور اب دن بدن آپ دیکھتے جائیں گے کہ جتنی سورتیں ایک پارے کے اندر بڑھتی جائیں گی اتنا اس پارے کا پیغام بھی پھیلتا جائے گا. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ون ڈش ون آئٹم، وہ ایزی ٹو کھانا اور ڈائجسٹ ہونا ہوتا ہے. لوگوں کے پاس چوائس تو تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ اس میں فوکس ہوتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ملنا. تو بہرحال آپ بالکل اسی طرح سے دن بدینہ محسوس کرتے جائیں گے کہ قرآن آپ کے لیے پہلے سے زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ کو سمجھ آنے لگا ہے. تو پچھلے پارے میں بہت ساری بات ہم نے سورہ کہف کے ناطے بھی کی تھی. اللہ نے اسی میں ہمیں بتا دیا کہ خسارہ پانے والے لوگ کون ہوں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا. اونلی ون ٹائم اپرچونیٹی تھی اور انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا. قیامت کے دن ایسے لوگ حسرتوں کا شکار ہوں گے. پھر ہم نے حضرت زکریہ، جو کہ سورہ مریم کے بالکل شروع کی شخصیت دکھے تھے، ان کی دعاؤں کی قبولیت اور اس قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی اور ہمیں بھی بتا دیا کہ جہاں نیکیاں ہو رہی ہوں، جہاں اچھے کام ہو رہے ہوں، وہاں دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہیں. ابھی آپ بھی ذرا سی کوئی دعا مانگ لیجئے چپکے سے. ہمارا ایمان ہے کہ ان جگہوں پہ فرشتے بھی موجود ہیں، اور اللہ کی رحمت سے وہ سارے وعدے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ہم پڑھتے ہیں وہ موجود ہیں. تو میں بھی اللہ سے اپنے لیے کوئی ایک بڑی اچھی سی دعا کر لوں، آپ بھی مانگیے. چلیے اللہ تعالیٰ قبول کرے. پھر ماں اور بیٹے کا بے مثال کردار دیکھا تھا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی صورت میں، اور اس کا تو بس یہی کہ جملہ یاد رکھیے کہ ماں مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا. آج عیسیٰ جیسے بچوں کی خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر جو محنت کر کر آ رہے ہیں وہ ماؤں کو مریم کی طرح، اور بہنوں اور بیٹیوں کو مریم علیہ السلام کی بہنیں اور بیٹیاں بنانے کی کوشش ہے. پھر مخلص اور سچے انبیاء کا ایک سلسلہ سورت مریم میں ہم نے دیکھا، اور ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کی تصویریں دکھاتی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ فلاں ہے. یعنی ایک جیسے آپ فیملی کہتے ہیں نا، تو پروفٹ فیملی ہم نے سورت مریم میں دیکھی تھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے. اور پھر دعا قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ہمیں اس پورے پچھلے حصے میں دکھا تھا سورت طہٰ اور سورت مریم دونوں کے بعد. اب چلتے ہیں ہم اس خوبصورت پارے کے لیے. تو پہلی تو بات ہے کہ آپ کو اس پارے میں اللہ نے ایک بار پکارنا ہے، اور وہ ایسی پکار ہے کہ جس میں اتمام حجت ہے. بس یہ ہے وہ ایکسائٹمنٹ جو میں پارے کے اینڈ تک اپنے دل میں رکھنے والی ہوں. ابھی آپ کو صرف اشارہ دے دیتی ہوں کہ اس پارے کا تھیم اتمام حجت ہے. یہ وہ پارہ ہے کہ جس میں ہم سورت الانبیاء اور سورت حج پڑھیں گے. اس پارے کے اندر اتمام حجت کیسے ہے؟ انبیاء کرام کے تذکرے اور ان کی قوموں کے حالات تو پیچھے بھی پڑے، لیکن اس پارے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، उसके मुखालफीन को इतमाम हुज्जत की धमकी मिली। सूरत हज में आपको आयत मिलेगी कि जिसमें पहली दफा मक्का वालों के ऊपर हाथ उठाने की इजाजत मिली। 13 साल का जुल्म और सितम था। ये सारी बातें हम उधर करें तो आप ज्यादा अच्छा समझेंगे, बस मुझे तो हर तरफ इस बारे में इतमाम हुज्जत ही मिला। हुज्जत तमाम, एनफ इज एनफ, बस हद की भी हद हो गई। तो लिहाजा नसरु मिन अल्लाह व फतहुन करीब में इस बारे में आपको वो आयत भी मिलने वाली है कि जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। सूरत अंबिया नबियों के किस्सों से भरी हुई दुआओं से, लेकिन असल इस पारे का जो ब्रेन जो मगज है वो सूरत हज में। और मैंने देखा बहुत सारे लोग उससे थोड़ा सा ऐसे फील करें कि बहुत मुश्किल है, उसमें कुर्बानी के बारे में बातें हैं, हज की कुछ चीजें हैं। तो लेकिन यह है कि जब आप इस फहम के साथ जिसके साथ अल्लाह आपको मुझे यहाँ लाकर बिठा रहा है इसके साथ पढ़ते हैं तो फिर हमारा दिल खुश और मुतमईन होने लगता है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सूरत अंबिया की नहीं बल्कि सूरत हज की आखिरी आयत पे होगा। ये वो पारा है कि जो उम्मत मुस्लिमा को उनकी जिम्मेदारियां दिखाता है। तो ईमान की ताकत में आज सारी की सारी बात उम्मत वसत की जिम्मेदारियों पे है। पारे कैंड पे अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को 4 नुकाती काम दे दिया है। थिंग्स टू डू है, जॉब दे रहा है, तुम्हें चुन भी रहा है, और जब जिसको चुना जाता है तो फिर वो घर जाकर सो नहीं जाता। जॉब को साइन करके फिर कोई ये नहीं कहता कि अब मुझे क्यों बुलाते हो, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आखिर मैं कब तक आऊँ। तो एम्प्लॉयर कहेगा कि जब तक तुम्हें पैसे चाहिए। अल्लाह ने दूसरे पारे में उम्मत मुस्लिमा को एक काम दिया था और एक टाइटल दिया था, एक उनवान दिया था। इस बारे में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उसी की मजीद डिस्क्रिप्शन, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि 15 पारे बीच में जो गुजर गए दूसरे और 17वें के बीच में, तो नॉमिनेशन तो हो गया था लेकिन बीच में जो कार्रवाई चल रही होती है, तो इस बारे में उम्मत वसत की जिम्मेदारियां और ये सब कुछ है। सूरत अल-अंबिया यहाँ क्यों आई? इससे पिछले पारे में सूरत तौहा पे ये सूरत पूरी हुई थी और वहां आखिरी लफ्ज क्या था? मुतरबिसुन, तुम भी इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। क्यामत का इंतजार था। और ये सूरत एक तरह बलिन्नास ही से शुरू होकर कहती है कि वो आ गई है करीब जिसका इंतजार था। तो एक तरह से ये सूरत शुरू होती है। सूरत अल अंबिया नाम की तरह इसमें किस्से और दुआएं भी अंबिया कराम की हैं। और मैंने कल कुछ लोगों को जो दावत दी इस पारे की, तो मैंने आयत करीमा का नाम बोलकर ये कल के पारे में हम आयत करीमे को पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा लोगों से वो बात कीजिए जो वो सुनना चाहते हों। हम बाज़ दफ़ा दावत देते हुए अपने एंगल से बात कर रहे होते हैं, हालांकि बात करने की जरूरत होती है अगले के पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से। और सूरत अंबिया दुआओं से भरी हुई सूरत है। आइए शुरू करते हैं। इस पूरे पारे का अंबिया और सूरत हज का कनेक्शन आखरत से भी मिलता है। इतमाम हुज्जत होती ही उसमें और पूरे पारे के अंदर जहां जहां आपके नसीब में हुआ, आपको इंशाअल्लाह ताला बताती रहूंगी कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको मुझे इसका हुक्म दिया है कि तुम ये काम करो। और दूसरी ये बात बस एक करके फिर हम तर्जमे पे जाते हैं कि लफ्ज़ अम्बिया के साथ पीछे कौन सा पारा था? तीसरा पारा था तिलकर रुसुल, वहां रसूलों की बात थी, यहाँ नबियों की बात है। चलिए अल्लाह से दुआ करके शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रुकू नंबर 1 पहली 10 आयात है। कुरान बसीरत पैदा करता है। नोट करिए इस जुमले को। बसारत बहुत सारे लोगों के पास होती है, हमें बसीरत की तलाश है, उसके लिए हम कुरान के पास आते हैं। बसारत के लिए आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और बसीरत लेने के लिए कुरान स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं जब बसीरत मिलती है तो क्या चीज़ करीब दिखती है। और बसारत तेज़ हो तो वो आपको मुख्तलिफ स्लाइड्स दिखाते हैं, आप तुम पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, छोटे लफ्ज़ थे बड़े थे, और जहाँ बात सेट होता है बंदा वहाँ पे अपने चश्मे का नंबर देकर ऑर्डर करके आ जाता है। हज़ारों देकर अपनी इन दुनिया की आंखों को ही सेटिस्फाई करने के लिए वो खुश हो रहा होता है। जब कुरान की बसारत आपको मिलती है, आपको यहाँ आके ये पता चल रहा होगा और चलेगा कि आपकी मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, छोटी बड़ी खूबियाँ खामियाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी शाकिला क्या है। और इस कुरान को पढ़ने के बाद ही तो समझ आता है कि दुनिया जिसको हम करीब समझकर अहम समझ लेते हैं, वो इतनी बड़ी आखरत जो कि सबसे अहम थी उससे बहुत छोटी है। यानी आज बहुत सारे लोगों की बसीरत का मसला क्या है, उनको करीब पड़ी चीज़ तो बड़ी दिखती है और अहम चीज़ जो ज़रा सी दूर है अभी वो नज़र नहीं आती। आइए इसको रुकू के साथ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरीदून मा याती है मिन जिक्र मिन रब्बिहि मुहदसिन इल्लस्तमऊहु वहुम यलअबून लाहियतन कुलूबुहुम। ज़रा से इसके लफ्ज़ों पे गौर करें, ये बसीरत मिल जाए ना तो आपको तर्जमे की ज़रूरत नहीं है। लाहियतन कुलूबुहुम वसर्रु नजवल्लज़ीन ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तातून सिहर व अंतुम तुबसिरून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। इनके पास इनके रब की तरफ से जो भी नई नई नसीहत आती है इसे वो खेल कूद में ही सुनते हैं। टाइम ही नहीं, संजीदगी नहीं है, वेरी केयरलेस एटीट्यूड अबाउट क्यामत अबाउट कुरान। हाँ हाँ नहीं हमें तो सोना है, हाँ हाँ नहीं हम तो बिजी हैं, नहीं मैं तो जॉब पे हूँ, मैं तो वर्क में हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह ने चोरी पकड़ ली इंसानों की। जब कुरान की बात की जाए, जब आखिरत की बात की जाए, कहते डरो नहीं, छोड़ो ना, मुझे नहीं पढ़ना। हमारे घर के अंदर कुरान चल रहा हो और हम उस कुरान को ना सुने, हमारे हमसाए में कुरान की बात चल रही हो और हम उसको ना सुने, तो आप बताइए क्या होगा? कैसे एक इंसान ना समझी की बात करता है? तो जितना ज्यादा आपके अंदर की बसीरत खुलती जाएगी ना, आपको नेकियों के मौके, खुशकिस्मती के मौके बन के दिखेंगे। तो जितना ज्यादा आपकी मेरी जिंदगी में बसीरत आम होती जाएगी, हम उतना ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से वो मांगेंगे जो हमारे हक में बेहतर होगा। हम में से बहुत सारे लोग सारी जिंदगी वो कुछ मांगने लग जाते हैं जो के ना भी मिले तो गुजारा हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अपने घर की चीजों को सोचिए, जहन में लाइए, ये भी ना होता वो भी ना होता तो क्या गुजारा हो जाना था? हो जाता है। लेकिन वही बात है कि जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके दिल बिल्कुल गाफिल हैं और इन जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशियां की के वो तुम ही जैसा इंसान है। फिर क्या वजह है जो तुम आंखों देखे जादू में आ जाते हो? पैगंबर ने कहा, मेरा परवरदिगार हर उस बात को जो जमीन और आसमान में है बखूबी जानता है, वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि ये कहते हैं कि ये कुरान हैरान कुन ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि इसने खुद इसे घड़ लिया है, बल्कि ये शायर है, वरना हमारे सामने ये कोई ऐसी निशानी लाते जैसे अगले पैगंबर भेजे गए थे। इनसे पहले कितनी बस्तियां हमने उजाड़ी, सब ईमान से खाली थी, तो क्या अब ये ईमान लाएंगे? आपने उनका अपना कॉन्ट्राडिक्शन देखा ही ना तो में, नहीं ये है नहीं वो है। कोई कहता ये जादूगर है, कोई कहता ये शायर है, कोई कहता ये दीवाने हैं। यानी इसके ऊपर ही तो उन्होंने फिर एका किया था कि एक बात करो, नहीं तो लोगों ने तुम्हें ही गलत कहने लग जाना है कि इनको खुद नहीं पता तो ये फिर कैसे बात मानेंगे। तो जरूरत है इस बात की कि अल्लाह के नबी पे लगे हुए इन इल्जामों को अपने ऊपर लेकर सोचें और फिर अपना जायजा लें कि हम अपने बारे में क्यों इतने सेंसिटिव हैं। हमें जरा सी कोई बात कह दे तो हम तो वो काम छोड़ने को तैयार होते हैं क्योंकि हमसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ताला इन सब को जवाब देते हैं, यकीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र किया फिर भी तुम अकल नहीं रखते। फी ही जिक्रुकुम अफला ताकिलून। आपका मेरा अपना जिक्र है इस कुरान में, क्या पता चला? ईमान से मुतल्लिक एक आयत है अंबिया 6, जिनको ना मानना हो वो मोजज़े देखकर भी नहीं मानते क्योंकि उनको हिदायत की भूख नहीं। पूरे रुकू में पहली बात इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम है, हिसाब का वक्त करीब आ गया। कभी भी किसी चीज के करीब आने का तस्वुर लाएं तो जहन में क्या आता है? तैयारियां ज्यादा कर दो, तेज कर दो, वक्त कम है, ये है और वो है। तो आपको मुझे क्या इस बात पे यकीन? आखरत का शेर सोया हुआ है जागने वाला। हकीकत यह है कि कुरान की बसीरत जब मिलती है तो इंसान को सबसे ज्यादा करीब अपनी मौत दिखती है क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ममात फकद कामत कयामत हो, जो मर गया उसकी कयामत कायम हो गई। कोई कहते हैं कि सैलाब करीब आ रहा है, अपने घरों से फौरन निकल जाओ। हरिकेन आ रहा है, लुजियाना स्टेट वालों से कहा जाए के फौरन निकल जाओ। जल्जल आने वाला बिल्डिंग खाली कर दो। क्या हमें अल्लाह की कलाम, अल्लाह की पुकार का इतना भी यकीन नहीं जितना किसी रेडियो और टेलीविजन की खबर का, किसी न्यूज़ चैनल का? हिसाब की कुर्बत इंसान को अपनी ज़िंदगी में देखनी चाहिए। जब जिस्म में कोई कमज़ोरी हो, चेहरे पे कोई झुर्री आ जाए, तो फ़ौरन इस आयत को याद कीजिए। लेकिन क्या करें, वहम फी गफलत मोरिदून, क्योंकि गफलत एक ऐसा मुहलक हथियार है जिससे इंसान खुद को ही हलाक कर डालता है। आज गाफिल है, हम जाहिल नहीं है। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन गफलत है। हम जो इबादत कर रहे होते हैं, हमारी वो इबादत भी कोई ज्यादा नहीं हमें समझ दे रही होती, फायदा नहीं दे रही होती। और इसमें फसलु अहले जिक्र की बात हुई, हकीकत ये कि आज हमारा कल्चर क्या हो गया कि हर अरबी चीज को कुरान समझ लेते हैं और उस पर फिर बेकार फितने उठाते हैं। हम अरबी के गाने भी कहीं से चलते फिरते सुनते हो ना, तो फौरन सर पे दुपट्टे लेने लग जाते हैं लोग। और इसी तरह एक हमारा मिजाज है कि हर दाढ़ी वाले को हम आलिम और हर हिजाब और निकाब वाली सिस्टर को हम आलिमा समझते हैं। हत्ता कि वो टीचर्स जो बच्चों को कुरान नाजरा पढ़ाने आते हैं, आप उससे मसले पूछ रही होती हैं। वो इमाम साहब जो मस्जिद में जमात करवाने आए, आप उनसे फतवे ले रहे होते हैं, जी जरा तलाक का मसला बता दें। कुरान आपको यहाँ एक पैगाम दे रहा है, और वो क्या है कि जो बात इंसान को मालूम ना हो वो इल्म वालों से पूछ लें। हर मसला उस आलम से पूछा जाए जिस शोबे का माहिर हो। क्या आप आंखें दिखाने के लिए दिल के डॉक्टर के पास जाएंगी? क्या BDS डॉक्टर के पास जाकर आप अपने सर दर्द की बात करेंगी? नहीं, वो आपके दांत देखेगा। तो आज से एक नियत कीजिए कि हर बंदे से हर बात नहीं पूछनी। मुफ्तियों के काम और हैं, इसी तरह शेयूख के काम कोई और हैं। कोई आम मेरे जैसा बंदा अगर आपके सामने आ जाए और आप उससे कहेंगे जहां बैठे बैठे मेरी दोस्त के फलां के साथ जो तलाक का इशू चला, जरा जल्दी जल्दी उसका फैसला कर दें, मैं नहीं बताऊंगी। मैं तो वैसे ही किसी ऐसे फिक्की सवाल का जवाब नहीं देती। ये है जो हमने आने आने बेचा दीन, टगे टगे बिका दीन हमारा। अब वो मौलवी साहब को भी अपनी इज्जत रखनी है बेचारों को। भाजी क्या कहेंगी, ये मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाने आते हैं, इसको तलाक के मसले नहीं आते, और हम इल्म वालों को फितनों में डालते हैं। अगली बात देखिए, अल्लाह कहते हैं तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेते, तुम क्यों नहीं आलिम बनते? क्योंकि किताब बन फी ही जिक्रुकुम, हमारा जिक्र, अल्लाह ने हमारी फितरत को पुकारा इस आयत में। इंसान को अपना जिक्र बड़ा ही प्यारा लगता है। किसी अखबार में आपकी कोई अच्छी खबर छप जाए, आप उस टुकड़े को संभाल के रख लेते थे पहले। आज आप देख लीजिए आपके जो बड़े बड़े प्रोफाइल्स हैं, आज तो अपने ग्रुप्स हैं और अपने नाम हैं, आपके अपने सोशल मीडिया, आपके चैनल। एक बच्चा भी चैनल बना के बैठ जाता है, एक औरत भी चैनल बना के बैठी है, एक दीनदार भी बैठा है। कि तुम्हें दीन की खिदमत करनी है तो तुम्हें नए चैनल की क्या जरूरत है? नहीं, उसमें मर्जी चलती है और उसमें क्लिक्स भी आते हैं, फिर उसमें अपना भी तो नाम आता है ना। मेरे नाम को कोई ना जाने, मेरा कुरान ही बस लोग जाने। ये है वो धोखा जिसकी वजह से लोग असल मकसद से दूर हुए होते हैं। काट काट के चीजें इधर की उधर, उधर की उधर डालते हैं ताकि लोग हमें देखें, हमारा नाम सुने, ये कर ले वो कर ले। इस किताब में तुम्हारा जिक्र है, इसको क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह की यही किताब कुछ लोगों के लिए इज्जत और कुछ लोगों के लिए जिल्लत का सबब बनती है। इसी किताब के जरिए लोगों को बुलंदियां मिलती हैं और इसी से पस्तियां मिलती हैं। एक सहाबी थे और उन्होंने जब सोचा कि कुरान पाक में मेरा जिक्र है, तो उन्होंने अपने आप को ढूंढना शुरू कर दिया। साबिकून अलवलून में ना पाया खुद को, और फिर इसी तरह से फाजिर लोगों में ना पाया अपने आप को, तो बिल आखिर फिर कहने लगे कि मैं सूरह तौबा की उस आयत में आ गया, खलत अमलन सालिहन वाखर सय्यन। आपको मुझे इस किताब को इस शौक से भी पढ़ना है कि इसमें मेरा आपका जिक्र है। किताबन फी ही जिक्रुकुम अफलत आकिलुन। और इस साल के दौरे कुरान में क्या आपको या अय्युल्लज़ीना आमनू की पुकारें दिल पे पड़ती भी नहीं महसूस हो रही? कितनी बार आपके रब ने पुकारना है आपको इस कुरान में? 89 टाइम। तो अगर आप ईमान वालियां हैं ना, तो 89 टाइम आपका जिक्र है इस कुरान में माशाल्लाह। और ईमान वालों की जो सिफात से कुरान पढ़ा हुआ है, अलमोमिनून अवलमोमिनात, और इसी तरह से जो कई जगह कुरान के पैकेजेस उन्हीं को सोच के बता रही हूँ, तो क्या आपको मुझे खुशी नहीं होती कि ये कुरान आपको मुझे बेहतरीन तरीके से गाइड कर रहा है? बात यह है कि हम सब ने कुरान को भी सुना ही नहीं, दिल के कानों से नहीं सुना, सर के कानों से तो इस वक्त भी सुन रहे हैं। दिल के कान खोलिए, ये रुकू आपको मुझे बसीरत दे रहा है। और मौत की और अपने हिसाब की फिक्र वही करेगा जिसने कुरान को दिल से सुना और इस पर गौर किया। अब सवाल ये है कि मैं किस चीज का हिसाब दूं, मुझे मिला ही क्या? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यामत का दिन होगा, ला तजूल कदम इब्न आदम इन दी रब्बी ही हत्ता युसलु अन्हु खमसा, قیامت کے دن آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے سے قدم بھی ہٹا نہ سکے گا جب تک کہ اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ عن عمره فی ما افناہ ہو، زندگی کن کاموں میں گزاری، وان شبابہ فی ما ابلاہ ہو، اور جوانی کہاں گزاری، مم مالن من این اکتسبہ ومن این انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ماذا عمل بما علم، اور اس پر جو علم حاصل کیا تھا عمل کتنا کیا، اور ہر انسان کی اپنی موت اس کی اپنی قیامت ہے۔ تو ہم سب کے لیے اس خوبصورت سے رکوع کو پڑھنے کے بعد عمل کا نقطہ یہی ہے کہ اپنی عقل اور شعور کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، قرآن کا علم حاصل کر کے اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ کا میرا ذکر ہے تو اس میں آپ کے دوسرے پیاروں کا بھی ذکر ہے۔ آگے رکو نمبر 2 ہے، 11 سے 29، عذاب کے وقت ظالم قوم کا حال کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں ایسی سیلف ایکسپلینیٹیو ہیں کہ آپ ابھی سنیں گے، میں آپ کو اس لیے کانشیس کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی ترجمے کے دوران لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو کوئی نہیں پڑھنے کی ضرورت، ذرا میں جا کے چولہے پہ ہنڈیے چڑھاؤں، اچھا ذہنی طور پہ کچھ اور ہی سوچ لوں، چلیں کوئی نہیں کان کچھ کر لوں، کچھ آنکھیں بند کر لوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا یہ ترجمہ سب سے مضبوط ٹول ہے آپ کو مجھے بصیرت دینے کا۔ سنیے گا، تصور کی آنکھ سے آپ کو ایسے لگے گا جیسے کسی جگہ زلزلہ آیا ہوا ہے، اور وہاں کی خبریں ٹی وی پہ ویڈیوز کے ساتھ اور وہاں کے حالات کے ساتھ دکھائی جا رہی ہیں۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے، بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی یعنی کمفرٹ دیا گیا تھا وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے، پھر تو ان کا یہی کال رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ سب ختم ہو گئے، ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ زندگی میں جن گھروں کو سنوارتے رہے، سجاتے رہے، چاڑتے رہے، پھونکتے رہے، اپ ڈیٹ ہی کرتے رہے، اپ گریڈ ہی کرتے رہے، اب یہ نہیں ٹھیک، اب وہ نہیں ٹھیک، اب ادھر کی ٹوٹی لیک ہو گئی، اب یہ پردے خراب ہو گئے، اب فریج ٹھیک نہیں، کیا سچ بتائیں ہر وقت ہمارے دماغ پہ اپنے گھروں یا اپنے لائف سٹائل کے ناطے سے کچھ نہ کچھ سوار نہیں رہتا؟ اللہ کہتے جاؤ پھر دیکھو کیا ہوگا، جب قیامت آئے گی، جب موت آئے گی، جب دنیا کی کوئی اور کلیمیٹی، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آئے گی، تو تمہیں اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ سب کیا تھا۔ تو پھر کیا کرو، آؤ تمہیں زندگی کا مقصد بتائیں۔ اگلی آیت 16 اسی پہ بات کرتی ہے، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، یعنی دس لائف از ناٹ اے فن پلکس، یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، یعنی اتنا دنیا کا کھیل تماشا سجانے کی کیا ضرورت تھی، کھیلنا تھا ہم خود ہی اکیلے کھیل لیتے اگر ہم ایسا ہی کرتے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ آج بھی ہندو دھرم میں ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ مت ہے کہ یہ دنیا رام کی لیلا ہے۔ رام کہتے خدا کو، لیلا کہتے دنیا کو۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا رام کی لیلا ہے، رام نے کھیلنا چاہا تو اس نے کھلونے بنا لیے، اور وہ کھیل رہا جسے اس کا دل بھرے گا وہ ایک لات مارے گا، دنیا کو ختم کر دے گا، اور اپنی بیوی بھی اس کا نام بھی ہے کچھ وہ بنا۔ یہ پوری کہانی پڑھی بھی ہے میں نے کمپیریٹو ریلیجن میں، اسی سے بتا رہی ہوں کہ وہ کھیل رہا ہے اور اس کی بیوی بھی، اور وہ مزہ کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ میل اینڈ فیمیل دیویاں بھی ہوتی ہیں، انہوں نے اس کے سامنے مت بنائے، وہ تو کریں، ان کو تو کوئی برا نہ کہے، لیکن جو اتنی سنجیدہ کتاب جن کو دی گئی ہو وہ اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگ جائیں، تو اللہ کہتے ہیں آؤ تمہیں بتائیں یہ قرآن کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے، وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ یہ ہے اتمام حجت۔ اس پوری دنیا کے بنانے کا ایک مقصد ہے کہ حق اور باطل، آپ ان آیتوں کا لفظ عربی میں دیکھیں نا، فیدمہ دماغ، یہ برین بھیجا، یعنی اس پوری دنیا میں جو کھیل ہو رہا ہے نا اس وقت آدم سے لے کے آج تک، یہ آدم اور ابلیس کا قصہ کیا تھا، آدم حق والے، ابلیس باطل، نبی کے ساتھ مکہ میں جو ہوا اور آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں ہر تھوڑے عرصے بعد یہ کھیل کیا کھیلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک دن ये फैसला होगा। 100 दिन चोर के, 1 दिन शाह का, लिहाजा तुम सोच लो कि तुम किसके साथ खड़े हो। जो सिपाही हक वाले के साथ होगा, हक की फतह उसकी फतह बन जाएगी, और जो बातिल वालों की लाइनों में खड़ा होगा तो बातिल की हार फिर उसकी हार होगी। आज उम्मत मुस्लिमा को बहुत सोच के आगे चलने की जरूरत है। ये बाइकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आप इसको सिर्फ सिंपल लेते हैं। आप आखिरी इंजाम को देखिए, जब बैंड होना है ना, तो किस लाइन में खड़ा होना पसंद करेंगे? माजी की शख्सियात को सामने रखे, कितने मुसलमान है जो फिरौन के साथ क्यामत के दिन खड़ा होना चाहते हैं, इबलीस के साथ, नमरूद के साथ, शद्दाद, कारून और हामान के साथ? कोई भी नहीं। तो फिर आज के दौर में क्यों नहीं सोचती? आज अपना जान बचा लीजिए, आप उस सारे कल्चर, वो सारे रंग ढंग, वो सारे तौर तरीके हटा लीजिए, क्योंकि कल उनका बुरा अंजाम आपका भी बुरा हो जाएगा। और अल्लाह आसमान पे फरिश्तों की हमें मिसाल दे रहे हैं, आसमानों और जमीन में जो है इसी अल्लाह का है, और जिसके पास है वो इसकी इबादत से न सरकशी करते हैं न थकते हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा करते हैं, फरिश्तों की मिसाल अल्लाह दे रहा है। पूरा दिन तस्बीह बयान करते हैं, आप भी कर लीजिए, सुभान अल्लाह की बबी हमदी, सुभान अल्लाह लजीम, और जरा सी भी सुस्ती नहीं करते। अल्लाह हमारी सुस्तियां दूर कर दे। सो सो के सोते रहते हैं, कब्रों में भी सोना है। मोमिन के लिए दुनिया काम की जगह और आखरत आराम की जगह। नम का नौ मतल अरूस की खबर अल्लाह हम सबको जन्नत में और कब्र में सुना दे। क्या इन लोगों ने जमीन की मखलूकात में से जिन्हें माबूद बना रखा है वो जिंदा कर देते हैं? कभी किसी पत्थर या लकड़ी के बुत ने किसी को जिंदा किया? नहीं। अगर आसमान और जमीन में सिवाय अल्लाह ताला के और भी माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। बस अल्लाह ताला अर्श का रब है, हर उस वसफ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं, और सब इसके आगे जवाब दे हैं। सवाल कीजिए खुद से, क्या मैं अल्लाह को जवाब देने के लिए तैयार हूँ? ये हिसाब यही है। आपको कोई 5,000 रुपये दे दे, बाद में हिसाब मांगे, आप नहीं दे सकते। कहाँ अल्लाह से इस जिंदगी का, इन साल का, इन मिनटों और इन सेकंड्स का हिसाब देंगे हम? बस शौहर पूरे महीने के खर्चे का हिसाब मांगते हैं, बीवियां सारा महीना जोड़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, क्योंकि दब दिखाएंगे। ये आप सारा साल क्या करते हैं? अकाउंट्स फाइल हो रहे हैं, अब उनको देने, अब ये चाहिए, अब इधर आपको अपनी चीज को डालना है, इसको डालना। क्या मैं और आप अल्लाह ताला को अपने अकाउंट्स दिखा सकेंगे कल? हेरा फेरियाँ वहां खुलेंगी नहीं, कमी बेशियां वहां नहीं खुलेंगी। तो अल्लाह ताला कहता है कि अभी इसी की फिक्र कर लो। क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं? इनसे कह तो लाओ अपनी दलील पेश करो। ये है मेरे साथ वालों की किताब और मुझसे अगलों की दलील। बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इस वजह से मुंह मोड़े हुए हैं। तुझसे पहले भी जो रसूल हमने भेजा, इसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। इयाक नअबुद व इयाक नस्तईन। ये सिर्फ आपको मुझे नहीं कहा गया, हर नबी ने अपनी कौम को यही पैगाम दिया। इसके बरक्स मुशरिक लोग कहते हैं कि रहमान औलाद वाला है, नाउज़ुबिल्ला, गलत है, इसकी जात पाक है, बल्कि वो सब इसके बाइज्जत बंदे हैं। यानी फरिश्ते अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह के बंदे हैं, किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते, यानी चढ़ाई नहीं करते कि अल्लाह आपने जो कहा वो ठीक नहीं, ये नहीं ठीक। वो इनके आगे पीछे के तमाम उमूर से वाकिफ है, वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते सिवाय इनके दिन से अल्लाह खुश हो, और वो खुद हैबते इलाही से लर्जों तरसा। फरिश्ते बेगुनाह होकर भी अल्लाह से डर रहे हैं, लरज रहे हैं, कांप रहे हैं, और बंदा गुनाहों के पिटारे सर पे रखा हुआ भी कहता है मैंने क्या किया, सभी करते हैं। क्या बड़ी बात है, इन हालात में करना पड़ता है, इस मुल्क में करना पड़ता है, आज के दौर में करना पड़ता है। अल्लाह हमारी जुबान ने अपने गुनाहों की सफाइयां पेश करते वक्त रोक ले, जुबान ने हमारी बंद हो जाए जब हम गुनाहों को जस्टिफाई करें। इनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूँ, तो हम इसे दोजख की सजा दें। हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए कि वो लोग जो अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं ना, उनकी दुनिया तंग होती है। सूरह तौहा में हमने मईशतन दंगा का नाम पढ़ा था, तंग जिंदगी, गुजरान, डिप्रेशन, स्ट्रेस। यहाँ अल्लाह ने कहा हसीदन खामिदी, बुझी हुई चिंगारियां बन गई। जब अल्लाह की पकड़ आती है ना, तो यह यानी वहां उनकी दुनिया की बुरी मंजर कशी थी और यहाँ उनका अंजाम दिखा दिया गया। आज आप देखिए कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं और जिस चीज की वजह से हम इतनी बड़ी आखरत को छोड़े बैठे हैं, ये क्या है? ये दुनिया की रैट रेस है, ये भी हो जाए उससे अच्छा, उससे हर शादी दूसरी शादी से बड़ी, हर घर एक से बड़ा, दूसरों को दिखाने जलाने के लिए हम खाते पीते, नहीं तो अल्लाह जानता है, आम बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये दुनिया की जो रैट रेस है, अगर एक चूहा जीत भी जाए रैट रेस में तो क्या रहा? चूहा ही रहा ना, हाथी तो नहीं बन जाएगा क्या इस दुनिया के मुकाबले? और क्या इस दुनिया की रेस? हर वक्त अमीरी गरीबी, वो अमीर वो गरीब, दिलों पे दिमागों पे, छोटे बच्चों के दिमागों में माओ ने ये कॉम्प्लेक्स डाला हुआ है, नहीं बेटा वो बहुत अमीर है वो ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते ना, मेरा बच्चा ये नहीं, वो तो बाहर रहते हैं हम तो नहीं। अच्छा फिर हमें उनके उतरे हुए ही दे दो, अच्छा अपनी चीजें ही हमें दे दो। ब्रांड्स, एक बच्ची की बात मुझे याद आ रही है कि उसने कहा कि मुझे ब्रांडेड लेनी है जैकेट, माने कहा नहीं इतनी महंगी, कहा अच्छा फिर मुझे यूज ले दें ब्रुक्त, क्योंकि ब्रांड उसमें एक नाम एक इधर एक कोई कुछ लिखा हुआ है। ये क्या बना रहे हैं हम अपने बच्चों को? याद रखिए चूहों की रेस में, चूहों में एक बड़ा चूहा बन जाएंगे तो क्या बनेंगे? तो अल्लाह करे कि हमारे दिल दिमाग खुल जाएं। फेथ इन एक्शन, इबादत के वक्त दुनिया को दिल से निकाल कर पूरी यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत करनी है। रोजमर्रा मामलात में चलते फिरते अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहना, सारी कायनात अल्लाह की ताबेदार है, हमें भी हर मामले में सिर्फ अल्लाह की बात माननी है और अल्लाह इसको हमारे लिए आसान कर दे। अपने लिए दिल की गहराइयों से ये दुआ मांगा करें कि मेरे मालिक मेरे लिए इसको आसान कर दे। दिल चाहे तो आमीन भी कह दिया करे ऐसी बातों पे।